CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 का 11वां पाठ चावल की रोटियां पृष्ठ 83 से 92 तक।
पृष्ठ संख्या 83।
चावल की रोटियां। आलेख पी ओंग खिन, अनुवाद मस्तराम कपूर।
पात्र परिचय। कोको 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा। नीनी 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। तिनसू 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। मिमी 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। उबा तुन जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयां, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। दो दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। कोको।
माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूं माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है।
पृष्ठ संख्या 84।
आहा, मजा आ गया। चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज। वो पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। आज तो डट कर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है।
नीनी।
कोको, ए कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूं नीनी।
कोको।
गजब हो गया, ये तो भुक्खड़ नीनी है। उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूं।
नीनी।
दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी।
कोको।
मैं इन्हें कहां छिपाऊं। रेडियो की तरफ देखकर मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। तभी जोर से बोलता है, अभी आता हूं नीनी, जरा रुको।
कोको।
आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है।
नीनी।
दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई।
कोको।
कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ।
नीनी।
क्या? यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है।
कोको।
लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है।
नीनी।
वह खराब है, इसीलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है।
पृष्ठ 85।
नीनी।
रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें।
कोको।
नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है।
नीनी।
आप कोशिश करके देख लें, मैं उठाकर ले आता हूं। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है।
कोको,
नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लग जाएगा।
नीनी रुक जाता है।
नीनी,
मैंने तो इसे छू ही लिया था। भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूं। तीन सू के घर जाता हूं, तुम आओगे?
कोको,
नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे।
नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है।
नीनी,
गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तश्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है।
कोको,
तश्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका।
मिमी, कोको दरवाजा खोलो, मैं हूं मिमी।
कोको,
ये तो मिमी है, उसे चावल की रोटियां मेरी तरह ही बहुत अच्छी लगती हैं, और वह हमेशा भूखी होती है, मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहां? वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी।
मिमी, फिर दरवाजा खटखटाकर,
कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो?
पृष्ठ 86।
कोको,
कहां छिपाऊं, कहां छिपाऊं? कमरे के चारों तरफ देखकर, ठीक, इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है।
मिमी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी?
कोको,
मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो।
कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं।
मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारे माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं, मैंने सोचा।
कोको,
मैंने सोचा, कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली।
मिमी, एक भी नहीं बची।
कोको,
सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली।
हाथ से पेट को मलते हुए, पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा।
मिमी, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। मैं चार पापड़ लाई हूँ, दो तुम्हारे लिए, दो अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा।
मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है, वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है।
मिमी, गर्मा गर्म है।
मिमी,
गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते।
कोको,
पापड़ देखकर होंठों पर जीभ फेरकर, स्वागत, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद दो मेरे लिए छोड़ जाए।
मिमी, एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है?
पृष्ठ 87।
कोको,
हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूं।
कोको चाय की केतली और दो कप उठा लाता है। मिमी एक कप में चाय डालती है।
मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा।
कोको,
स्वागत,
मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे मिमी को ये गुड़गुड़ ना सुनाई दे।
मिमी,
पापड़ खाते हुए।
यह कैसी आवाज है? कोको।
आवाज? कैसी आवाज?
मिमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज। यह फिर हुई, सुना तुमने? कोको।
ये हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज करता है।
दरवाजे पर दस्तक।
कोको।
कौन?
तिनसू।
मैं हूं तिनसू।
कोको उठने लगता है।
मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाजा खोलती है। तिनसू गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसू।
आहा, मिमी भी यहाँ है?
मिमी, आओ तिनसू। तिनसू
मेज के पास जाकर।
हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या?
कोको।
हेलो तिनसू।
मिमी और तिनसू मेज के पास बैठते हैं।
पृष्ठ 88।
मिमी और तिनसू मेज के पास बैठते हैं। मिमी तिनसू से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली हैं। तिनसू
केले के पापड़ों की तरफ देखकर। आहा, केले के पापड़।
मिमी, मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। तिनसू
नेकी और पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसू एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है।
मिमी कप देकर, यह लो चाय के साथ खाओ। तिनसू
चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहां आ गया।
कोको स्वागत।
तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती।
मिमी और तिनसू एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है।
मिमी, यह लो तिनसू, एक और खाओ। तिनसू,
नहीं नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है।
मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसू,
तुम जोर डालती हो तो मैं ले लेता हूं।
कोको
स्वागत। चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूं।
तिनसू,
ये आवाज कैसी है?
मिमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुसाया है, कोको कहता है वही यह आवाज करता है। तिनसू,
ऐसा लगता है किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसू और मिमी पापड़ खत्म करते हैं।
मिमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? तिनसू,
ओहो, मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं।
इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है।
वह रहा फूलदान अलमारी पर।
पृष्ठ 89।
मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूं। तिनसू उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। कोको,
नहीं नहीं मिमी।
मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको,
ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती हैं, उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं।
तिनसू,
मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको, चैन की सांस लेकर स्वागत।
मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे।
दरवाजे पर दस्तक।
कोको।
कौन?
उबातुन।
मैं हूं दुकान का मैनेजर उबातुन।
मिमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा।
जोर से।
अभी आई उबातुन चाचा।
उबातुन नीला फूलदान लिए आता है।
उबातुन।
हेलो बच्चों।
मेज की तरफ देखकर,
लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है।
मिमी, आओ चाचा आओ।
उबातुन मेज के पास बैठ जाता है।
मिमी, चाय लेंगे आप? उबातुन,
कोई एतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया।
मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है।
उबातुन,
कप से चुस्की लेकर,
क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली।
तिनसू,
चाचा आपने नाश्ता कर लिया है?
पृष्ठ 90। उबातुन,
अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूंगा।
मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत, आप यह पापड़ ले सकते हैं। उबातुन,
लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता।
तिनसू,
कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं।
उंगली से गले को छूता है।
उबातुन,
बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, यह आवाज कैसी है?
तिनसू,
यह चूहे की आवाज है, अक्सर यह आवाज करता है।
उबातुन,
मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है।
उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है।
उबातुन,
कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है?
कोको,
कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूं।
मिमी,
उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया है।
उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है।
उबातुन,
कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी।
इधर उधर देखकर,
हाँ वह रहा।
कोको,
क्यों फूलदान का क्या करना है?
उबातुन,
तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूं।
उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है।
उबातुन,
कोको से,
मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूंगा, शुक्रिया और गुड बाय।
मिमी तिनसू,
गुड बाय चाचा।
कोको,
गुड बाय चाचा।
स्वागत।
और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों।
पृष्ठ 91।
अभ्यास।
मंच और मंचन।
एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयां, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। दो दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है, दूर कहीं मुर्गा बांग देता है। इन पंक्तियों में कोको के घर के एक कमरे का वर्णन किया गया है। दरअसल नाटक के लिए मंच सज्जा कैसी हो, यह निर्देश उसके लिए है। तुम इस वर्णन को सुनकर उस मंच का एक चित्र बनाओ जो ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि बताया गया है।
नाटक की बात।
एक, नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र, और जिनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ इस नाटक में कौन कौन मुख्य और गौण पात्र कौन हैं? दो, पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो? इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकती हो। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस। तीन, क्या आपने कभी कोई चीज या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? चार, कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ।
पृष्ठ 92। एक चावल कई कई रूप।
एक, कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थीं। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के हिस्से के रूप में भी और नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता करो और एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगी कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि से भी भारत अनूठा है। दो, अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज बनाने की विधि पता करो और उसे इन बिंदुओं के हिसाब से लिखो। बिंदु एक, सामग्री। बिंदु दो, तैयारी। बिंदु तीन, विधि। तीन, कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। यहां ऐसे ही कुछ शब्द हैं, उनमें अंतर बताओ। एक, चावल, धान, भात, मुरमुरा, चिवड़ा। दो, साबुत दाल, धुली दाल, छिलका दाल। तीन, गेहूं, दलिया, आटा, मैदा, सूजी।
के, मे, ने, को, से।
कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था।
इस वाक्य में जिन शब्दों पर जोर दिया गया है वे वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। आगे एक मजेदार किताब अनारको के 8 दिन का एक अंश दिया गया है। उसके खाली स्थानों में के, मे, ने, को, से,
इनमें से चुनकर सही शब्द लिखो।
अनार को एक लड़की है। घर, रिक्त स्थान, लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है, सो उस, रिक्त स्थान, हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आ, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा है, कहीं मत जा। बारिश, रिक्त स्थान, भीगना मत अन्नो। और कोई बाहर, रिक्त स्थान, घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनार को है। प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं। प्यार, रिक्त स्थान। आज अनार को सुबह सोकर उठी तो हांफ रही थी। रात सपने, रिक्त स्थान, बहुत बारिश हुई। अनार को, रिक्त स्थान, याद किया और उसे लगा आज, रिक्त स्थान, सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों, रिक्त स्थान, कभी नहीं हुई, कभी नहीं। जम के बारिश हुई थी आज, रिक्त स्थान, सपने, रिक्त स्थान, और जमकर उसमें भीगी थी अनार को। खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब खूब भीगी थी।
इसी के साथ रिमझिम भाग 5 का 11वां पाठ यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।